7 जून दिन मंगलवार का नमस्कार भारत फैसल मोहम्मद अली से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुए कांग्रेस पार्टी से अलग।
कच्ची गोली तो नहीं खेलता हूं मैं, मुझे मालूम है कि आज मैं मेजॉरिटी ला सकता हूं, हम सरकार बना लेंगे। अब भूपेश बघेल की कांग्रेस 10 से ज्यादा नहीं जीतने दूंगा।
महाराष्ट्र के नेता गुरुदास कामत ने भी किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जानिए क्या और कैसा हो सकता है कांग्रेस पार्टी पर असर, और पाकिस्तान के गांव में मुसलमान पड़ोसी ईसाइयों के लिए कर रहे हैं चर्च की तामीर।
साढ़े कोई बद सलूकी नहीं, कोई सारे साढ़े ना एक दूजे ने असं प्यार में बजराए दें, एक दूजे दिन शादियाँ च विहवान च खुशी च गमी च गोजरे वाला जी जो वाक्य होया ना, ऐसा वक्त खुदा ना लियाए।
सब आगे, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार मानसी दास से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। अजीत जोगी ने कहा है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रायशुमारी के बाद निर्णय लिया जाएगा। उधर कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका में पिछले महीने सिनसिनाटी चिड़ियाघर में 3 साल के एक बच्चे के गोरिल्ला के बाड़े में गिर जाने के मामले में अभियोग पक्ष के वकील ने कहा है कि बच्चे के माता पिता पर कोई आरोप नहीं होंगे। हेराम्बे नाम के एक गोरिल्ला के बाड़े में बच्चा गिर गया था, जिसके बाद उसे बचाने के लिए चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने गोरिल्ला को गोली मार दी थी। इंटरनेट पर कई लोगों ने बच्चे की माँ को बेटे की उपेक्षा और गोरिल्ला की मौत का जिम्मेदार माना था। अभियोजक जो डेटर्स के अनुसार मां 3 अन्य बच्चों की देखरेख में लगी थी जब यह बच्चा भागकर गोरिल्ला के बाड़े की तरफ चला गया था।
By all accounts, this mother did not act in any way.
सभी पक्षों से देखें तो मां ने इस बच्चे को किसी तरह की दुर्घटना के हवाले नहीं किया। उनके साथ और भी 3 बच्चे थे और वो पीछे मुड़ी थीं। और यदि कोई इस बात पर यकीन नहीं करता कि 3 साल का बच्चा जल्द ही नजरों से दूर जा सकता है, तो उनके कभी कोई बच्चे होंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे ऐसा कर सकते हैं और बच्चे ऐसा करते हैं। ये थे अभियोजक जो डेटर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की प्रमुख जेनेट येलेन ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाता है तो इसका संभावित असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भविष्य के लिए अमेरिका पर प्रभाव डालने वाली अनिश्चितताओं के बारे में बात करते हुए फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष ने कहा कि इस महीने के आखिर में होने वाले जनमत संग्रह में यदि ऐसा कुछ हुआ तो इससे निवेशकों की भावना में बदलाव आ सकता है। इससे पहले ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने को लेकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने भी चेतावनी दी थी। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में हुती विद्रोहियों से लड़ रहे गठबंधन को राज्यों और हथियारबंद गुटों की संयुक्त राष्ट्र की उस सूची से हटा दिया गया है जो युद्ध क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सऊदी अरब ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यमन में पिछले साल सैकड़ों बच्चों की मौतें और उनके घायल होने के पीछे इस गठबंधन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अब वह रिपोर्ट में दिए खास मामलों पर गठबंधन सेना के साथ मिलकर संयुक्त जाँच करेगी। जॉर्डन सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों ने राजधानी अम्मान के पास एक शरणार्थी शिविर के सुरक्षा कार्यालय पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। BBC समाचार।
मंगलवार की सुबह आप सुन रहे हैं BBC हिंदी रेडियो का पहला प्रोग्राम नमस्कार भारत। न जाने आपके यहाँ मौसम का मिजाज कैसा है। दिल्ली में सूरज आसमान में पूरब रुख से झांकने लगा है। मौसम यूं तो पिछले चंद दिनों से बेहतर है, लेकिन गर्मी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। सियासी गर्मी भी अपने अंदाज में जारी है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विवादों से घिरे रहने वाले अजीत जोगी ने नया राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर दी है, तो महाराष्ट्र के गुरुदास कामत ने भी कांग्रेस को खुदा हाफिज कह दिया है। पहले बात अजीत जोगी की, जिन्होंने नई पार्टी के नाम के लिए समर्थकों से सुझाव मांगा है। नया दल बनाने का ऐलान जोगी ने सोमवार यानी कल किया। पूरा ब्यौरा आलोक पुतुल की इस रिपोर्ट में।
सोमवार को बिलासपुर के कोटमी में अजीत जोगी जब कह रहे थे कि मैं अब आजाद हो गया हूं, तो यह समझ पाना आसान नहीं था कि यह आज़ादी असल में कांग्रेस पार्टी को मिली है, पार्टी में अजीत जोगी के विरोधियों को या अजीत जोगी को। छत्तीसगढ़ में 2014 में एक उपचुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को मैदान छोड़ने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपए के कथित लेन देन का टेप सार्वजनिक होने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने इसी साल जनवरी में अजीत जोगी के विधायक बेटे अमित जोगी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा अजीत जोगी को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के निर्णय से पहले ही अजीत जोगी ने सोमवार को पार्टी बनाने की घोषणा कर दी और उसका घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जोगी का कहना था कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
या उनके फैसले हैं भाई, ऊपर वालों के, हम लोग छोटे लोग। अब देखिए, मैं मेरे सिद्धांत रूप से मैं दोनों के बारे में मेरी क्या चर्चा हुई ये किसी को नहीं बता। सोनिया गांधी जिस बात हो गई मेरी उनको बता दिया सर, अब दिल्ली नहीं जाना है, अब छत्तीसगढ़ की मिट्टी छोड़ूंगा नहीं, चिपक गई है मुझसे।
अजीत जोगी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया है, हालांकि पार्टी का नाम अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन अजीत जोगी उत्साह से भरे हुए हैं।
30-35 साल से राजनीति में, 21 साल प्रशासनिक सेवा में रहा, कच्ची गोली तो नहीं खेलता हूँ मैं, और मुझे मालूम है कि आज मैं मेजॉरिटी ला सकता हूँ। हम इतना जानते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, अब भूपेश बघेल की कांग्रेस 10 से ज्यादा नहीं जीतने दूंगा, ये भी वादा कर, 10 पे रोक दूंगा।
जाहिर है जोगी की एक एक गतिविधि पर कांग्रेस पार्टी की नजर भी बनी हुई है। जोगी की सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि हर बात की खबर पार्टी आलाकमान को पहुंचा दी गई है।
आज के घटनाक्रम पे सब लोग निगाह लगाए हुए थे, हम लोगों ने भी उसे बारीकी से देखा है और 3 बातें उन्होंने कही है। एक तो उन्होंने कहा कि बंधन मुक्त हो गया हूं मैं, दूसरी बात उन्होंने कहा घोषणा पत्र जारी किया, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि नया पार्टी बनाने का हमने फैसला ले लिया है। ये सब बात को हाईकमान को हमने बता दिया, अभी तक कोई लिखित नहीं उन्होंने दिया।
अजीत जोगी के ताजा फैसले के बाद अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान के पास कहने बताने के लिए क्या बचा है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी को अब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की भाजपा सरकार से भी लड़ना होगा और अजीत जोगी की नई पार्टी से भी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
हाल में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में केरल और असम में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ में नई परेशानी, महाराष्ट्र का रुख करते हैं जहां सीनियर कांग्रेसी नेता गुरुदास कामत ने पार्टी और राजनीति को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मुंबई के पूर्व कांग्रेस प्रमुख कामत ने बताया कि 10 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और पार्टी से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
मुंबई कांग्रेस इकाई में सोमवार शाम हड़कंप मच गया जब पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा महासचिव गुरुदास कामत ने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा देते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। पार्टी के अन्य नेताओं के लिए इस खबर से एक बड़ा झटका लगा। कामत के इस्तीफे का सीधा मतलब यह है कि आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर गहरा असर और काफ़ी नुकसान। हालांकि कामत ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वह युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि इस्तीफे की असली वजह है महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए पी चिदम्बरम की उम्मीदवारी। इस निर्णय से मुंबई कांग्रेस के कई नेता नाराज है, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। कामत ने अपने बयान में कहा है कि 44 साल सक्रिय राजनीति में रहने के बाद वह पिछले कुछ महीनों से इस्तीफा देने की सोच रहे थे। उन्होंने पिछले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें इस निर्णय की जानकारी दी, जिसके बाद अपना इस्तीफा भी भेज दिया। गौरतलब है कि कामत ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जब कई दिनों तक पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उन्होंने यह मान लिया कि यह इस्तीफा मंजूर हो गया है।
ये थे अश्विन अघोर। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रशीद खुदबाई। दोनों बातें रशीद, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। अजीत जोगी का अपनी पार्टी का ऐलान और गुरुदास दास कामत का कांग्रेस छोड़ना, कैसे आंकेंगे आप दोनों को? और साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि चिदम्बरम को जो राज्यसभा के लिए सीट दी गई है उसकी नाराज़गी थी गुरुदास कामत साहब को, जोगी साहब को किस बात की नाराज़गी थी?
जी, अजीत जोगी भी राज्यसभा के उम्मीदवार थे, वो चाहते थे, उन्होंने राहुल गांधी से बात करी और आग्रह कर रहे थे कि उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा दी जाए, लेकिन ये बात नहीं है कि राज्यसभा नहीं मिली इसलिए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सोनिया गांधी अध्यक्ष पर हैं, लेकिन वो आगे वो सिलसिला जारी नहीं रखना चाहती। राहुल गांधी को वो कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो है वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का विरोध कर रहा है। तो इस जो रस्साकशी कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर चल रही है उसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े लीडर जो है, जो क्षेत्रीय नेता है, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
तो क्षेत्रीय नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो एक तरह से जो है बड़े नेता जब नहीं रहेंगे पार्टी में, तो इसका लंबे समय पे या आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा पार्टी पर?
देखिए, उम्मन जब भी कोई राजनीतिक दल जब उसका बुरा समय आता है तो अंदर एक बिखराव होता है और एक भगदड़ मचती है। 1977 का आप स्मरण करें, जब इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हारी थी तो करीब आधी से ज्यादा पार्टी जो है वो कांग्रेस छोड़कर चली गई थी। लेकिन उस वक्त इंदिरा जी ने एक अलग एक पार्टी बनाई, एक जो ब्रेकअप है कांग्रेस, और बाद में वही कांग्रेस असली कांग्रेस समझी जाने लगी। लेकिन इस समय 2004 से ही, जब मई 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी बुरी तरीके से हारी, उस वक्त कांग्रेस ने कोई रद्दबदल नहीं किया। जिस धरने पे चल रही थी उसी पे चलती आ रही है, और सिर्फ एक जबानी जमा खर्च होता है। जिस तरीके से या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को आगे आके एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कड़े फैसले लेने चाहिए थे, अनुशासन का पालन करना चाहिए था, ऐसा सब नहीं हुआ। तो कांग्रेस जन में उनके मन में बात बैठ गई कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कांग्रेस हारती जाएगी, अभी 44 सीटें उससे और कम आएंगी। तो उसको लेकर के एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तरह का एक कांग्रेस में फैल रहा है, और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस चीज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज अभी और होगी। उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ कई लोग कांग्रेस प्रसाद वर्मा जा चुके हैं, और भी लोगों की ऐसी बातचीत चल रही है जो दूसरे राजनीतिक दलों में जाएंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति में कोई घर नहीं बैठता, कहने को जरूर कहते हैं कि हम सक्रिय राजनीति से जा रहे हैं, लेकिन फिर वो किसी और दल में शामिल हो जाते हैं।
तो गुरुदास कामत साहब किस तरफ जा सकते हैं?
देखिए, अभी तो गुरुदास कामत, मैं आपको बताऊं कि वो राजीव गांधी के बहुत करीब थे और एक दमदार नेता थे, और पार्टी के बड़े एक पार्टी के अंदर वो लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो वो जो पार्टी उन्होंने अभी छोड़ी है, मुझे लगता है कि अभी वो कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जरूर उनको जो है, क्योंकि उनका एक साफ सुथरी छवि है, तो हो सकता है कोई भी बड़ा राजनीतिक दल जो है वो शिवसेना में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी दल जो है वो उन पर कोशिश करेंगे कि वो उसमें चले जाएं।
एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि अजीत जोगी की बात पूछे, उन्होंने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उनकी कितनी बड़ी जमीन है, क्योंकि एक विवादास्पद नेता भी रहे हैं वो?
जी हाँ, जो अजीत जोगी का जो एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए, अजीत जोगी की जमीनी ताकत कभी भी नहीं थी। वो जब छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि बहुत सारे दूसरे लोग थे जो सक्रिय थे छत्तीसगढ़ में, उनका जो था उनको नजरअंदाज करके अजीत जोगी को एक तरह से थोपा गया था, और उसकी वजह से कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में कभी पनप नहीं पाई। जबकि जो संयुक्त मध्य प्रदेश था उसमें कांग्रेस की अधिकांश सीटें जो है छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र था वहां से आती थी। तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मांगी, अपने जिद के ऊपर अजीत जोगी आगे बढ़ा करके, और उसके बाद अजीत जोगी ही कांग्रेस को जो है आंखें दिखा रहे हैं। ये चीज जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या करता है कि अपनी पसंद के लोगों को थोपता है राज्य के स्तर के ऊपर, और ये चीज जो है ये बहुत बड़ी एक कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि और भी राज्यों में इस तरह की बातें जो होंगी, जैसे आप देखें कि चिदम्बरम को भी जो महाराष्ट्र राज्यसभा भेजा गया है उसका एक गुरुदास कामत उसकी वजह से पार्टी छोड़ी है उन्होंने। तो ये चीजें जो अभी हाई कमांड कल्चर जो है, उन्हें लगता है कि कार्यकर्ता का तो काम है सिर्फ सड़क पर आकर उनकी लड़ाई लड़ना, फैसला लेना उनका है, लेकिन फैसलों के पीछे जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो एक राजनीतिक आकलन होना चाहिए, वो नहीं होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि कदवा इस पूरी जानकारी के लिए। एक रिपोर्ट कुछ ही देर में सुनेंगे उत्तर प्रदेश के बिसाहड़ा गांव की, लेकिन पहले लिए चलते हैं आपको सीधे वॉशिंगटन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देश की अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पर अमेरिका पहुंच गए हैं। 8 जून को वो अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। ब्रजेश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं यूएस वॉशिंगटन, आज क्या रहा उनका कार्यक्रम?
जी, मोदी सोमवार की दोपहर वाशिंगटन पहुंचे, यानी यहां अमेरिका में इस वक्त सोमवार ही है, और हवाई अड्डे से पर हम जो पिछले दौरों की तरह ही उनके काफी समर्थक जुटे हुए थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे वहां भी, और वहां से वो सीधा आर्लिंगटन सेमेट्री गए जहां कई अमरीकी शहीदों और अमरीकी नायकों को दफनाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में मारी गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को भी श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारजनों से मिले, और वहीं पर मौजूद थी भारतीय मूल की एक और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, और प्रधानमंत्री ने कुछ पलों के लिए उनसे भी बात की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। सोमवार की ही शाम एक समारोह में अमरीकी प्रशासन ने भारत से चोरी हुई कई प्राचीन मूर्तियां भी लौटाई भारत को, और फिर प्रधानमंत्री वाशिंगटन के नामी गिरामी जो थिंक टैंक्स है उनके प्रमुखों से भी मिले हैं। ये काफी व्यस्त दौरा है, लेकिन पिछले दौरों की तरह इस बार मेडिसन स्क्वेयर गार्डन या फेसबुक जैसे मंचों पर भारतीय समुदाय के साथ उनका कोई कार्यक्रम नहीं है।
तो लेकिन कल उनका एक अहम कार्यक्रम है ब्रजेश, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात, कितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मुलाकात को लेकर?
जी हाँ, काफी अहम मुलाकात है ये, और अमरीका में जब मंगलवार की सुबह होगी उस वक्त ये मुलाकात होनी है। जो तीन चार बातें जो इस की उम्मीद की जा रही है इस मुलाकात से, उनमें एक तो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच माना जा रहा है कि आखिरी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, और ओबामा पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने जो वादे किए थे उन पर हो सकता है प्रधानमंत्री की अंतिम जो मुहर है वो लेने की कोशिश करें, उसके लिए दबाव डालें। एक दूसरे के सैन्य तंत्र के इस्तेमाल पर समझौता जो की जो बात चल रही है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की, जिसके तहत अमरीकी फौजी विमान भारत और उसके सैन्य अड्डों पर ईंधन या मरम्मत के लिए उतर सकते हैं, उस पर सैद्धांतिक रूप से समझौता हो चुका है, लेकिन दोनों ही पक्ष पूरी कोशिश में है कि इस दौरे पर इस पर दस्तखत हो जाए। आप जानते हैं भारत का एक गुट निरपेक्ष का इतिहास, निरपेक्षता का इतिहास रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और भारतीय अधिकारी इस पर बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं। परमाणु बिजली घरों का जो ठेका है, करीब 6 परमाणु बिजली घरों का ठेका अमरीकी परमाणु ऊर्जा कंपनी जो वेस्टिंग हाउस है उसको दिए जाने का भी ऐलान हो सकता है, और मोदी की उम्मीद होगी कि जो भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता की कोशिश कर रहा है और जिसके लिए स्विट्जरलैंड में उनको काफी भरपूर समर्थन मिला, उसी तरह का समर्थन अगर राष्ट्रपति ओबामा दे, क्योंकि ओबामा प्रशासन इसके हक में है, अगर ओबामा की तरफ से आ जाए तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर होगी।
ब्रजेश, दो सवाल है मेरे और संक्षिप्त जवाब चाहूंगा इनका। एक तो ये है कि कांग्रेस का साझा सत्र होगा, उसको किस तौर पे देखा जा रहा है, वहाँ कितना अहम होगा, और साथ साथ एक सवाल जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हिलेरी क्लिंटन ने जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए ज़रूरी मत जो हैं वो जुटा लिए हैं।
जी, कांग्रेस की जो साझा बैठक का संबोधन है, ये साझा सत्र नहीं है।
ओके, साझा बैठक का, माफ कीजिएगा
जी, कई मायनों में ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी कांग्रेस ने उन्हें अमेरिका में पांव नहीं रखने देने का प्रस्ताव पास किया था, और जो अमेरिकी नीतियों के गठन में कांग्रेस की अहम भूमिका होती है, और उनकी भूमिका कई बार राष्ट्रपति से भी ज्यादा अहम होती है, तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर न सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों के सामने भारत के विकास का एजेंडा पेश करेंगे, आर्थिक सुधारों की बात करेंगे, बल्कि उन आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, खासकर जो आशंकाएं हैं आर्थिक सुधारों की रफ्तार को लेकर या भारत में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हक से जुड़ी जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आपके दूसरे सवाल पर अगर आऊं तो बेहद अहम, वो एक दूसरा ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचा है अमरीका एक मायने में, क्योंकि कल 6 राज्यों के प्राइमरी चुनाव है, यानी मंगलवार को, लेकिन उसके पहले ही जैसा कि आप जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में 2383 प्रतिनिधि या डेलीगेट्स की जरूरत होती है पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए, तो एपी समाचार एजेंसी ने अपनी पहल पर जाकर के जो पार्टी के अंदर जो सुपर डेलीगेट्स होते हैं उनसे पहले ही पूछ लिया चुनाव से कि वो किसको समर्थन देने जा रहे हैं, और उन्होंने हिलरी क्लिंटन के समर्थक को समर्थन देने की बात की है, और उस हिसाब से उन्होंने जोड़कर ये ऐलान कर दिया है कि वो आंकड़ा हिलरी क्लिंटन पार कर गई हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफी ऐतिहासिक पल है अगर वो क्योंकि अमेरिका की पहली
महिला
राष्ट्रपति उम्मीदवार बनेंगी वो। ये हिलरी क्लिंटन ने उसके फौरन बाद ट्वीट किया है कि हमें बहुत खुशी हुई है एपी, लेकिन हमें अभी प्राइमरीज जीतने हैं और मैं अभी भी एक एक वोट के लिए संघर्ष करूंगी और चाहूंगी कि इन प्राइमरीज में जीते। और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बर्नी सैंडर्स, उनका ये कहा है कि मीडिया को इतनी जल्दी इस फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए था और परिणाम आने देना इंतजार करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब फिर से एक बार रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां की दादरी के बिसाहड़ा गांव में सोमवार को एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी है। कुछ ग्रामीणों ने एक बैठक करके सरकार से मोहम्मद अखलाक के परिजनों के खिलाफ 20 दिनों के अंदर गोहत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
पिछले साल गोमांस रखने के संदेह में एक उग्र भीड़ ने बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। हमले में मोहम्मद अखलाक की मौत हो गई थी, जबकि उनका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पिछले दिनों जब अखलाक के घर से लिए गए मांस के नमूने के गोमांस होने की पुष्टि हुई तो ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। हालांकि इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि अखलाक के घर से मिला नमूना गोमांस नहीं था। पिछले दिनों आई प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद ग्रामीणों ने कथित तौर पर 100 से अधिक गांवों की महापंचायत बुलाई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोई महापंचायत नहीं हुई। दादरी के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह कहते हैं,
महापंचायत कोई आयोजन नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक बैठक करेंगे, इसके बाद महापंचायत वो उन्होंने 20 दिन का समय दिया, यही कहके हम लोग अपनी बात करेंगे, हमने सब जगह अपने प्रार्थना पत्र दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम लोग 20 दिन के बाद अपना प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे महापंचायत के माध्यम से करें या किसी और माध्यम से। तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं दिख रहे होंगे उसमें, वो बैठक लगभग डेली होती रहती है।
प्रशासन को इस बैठक की जानकारी थी, इसलिए माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते वहां पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है, लेकिन निषेधाज्ञा के बावजूद बिसाहड़ा के ग्रामीणों ने स्थानीय मंदिर में बैठक कैसे की, इस सवाल पर अनुराग सिंह कहते हैं,
ऐसा धारा 144 में जो प्रतिबंध रहता है विधि विरुद्ध जमाओं पे रहता है, हर शादी ब्याह बर्थडे तो ऑफिस स्कूल सब बंद नहीं है, सब जगह गैदरिंग है।
बैठक में मुख्य तौर पर मोहम्मद अखलाक के परिवार वालों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग के साथ साथ परिवार को दिया गया मुआवजा वापस लेने की भी मांग की गई। इस मांग को योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेता भी दोहरा चुके हैं। वहीं अखलाक के परिवार वालों का कहना है कि वो मथुरा रिपोर्ट को चुनौती देंगे। अखलाक के भाई जान मोहम्मद कहते हैं कि इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
फैसले के लिए 20 बार दबाव बनाना, और कई जगह उन्होंने दादरी में भी हमें बुलाया, अलग अलग जगह वहाँ पे बैठ के बात की, हमने उनसे यही कहा देखो ये तो सब सरताज की बात है भाई, वो जिम्मेदार है लड़का अपने परिवार का, मुख्य पैरोकार भी वो ही है, बाप के बाद वो वारिस भी है परिवार का, अगर हम किसी का नाम लिखवाते तो चलिए हम गवाह भी होते, हम किसी को पहचानते, जब हम में से कोई सा भी भाई मौका वारदात पे नहीं है तो हम किसी का नाम क्यों लें, जानते हुए भी नहीं लिया, बस वही बच्चे बताएं जो पिटे हैं, जिनके साथ हादसा हुआ, तो उन्होंने ही बताया साहब अपने बयानों में, ना ही देखिए मेरे सामने, मैं लड़के का चाचा हूँ, मेरे सामने कभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं।
स्थानीय लोग और भाजपा जहां मथुरा की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद अखलाक के परिवार के खिलाफ गो हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले साल हुई इस घटना के सिलसिले में एक स्थानीय नेता के बेटे समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। अब आगे जो है आपको बीबीसी की आज की मुख्य पैकेज हम आपको सुनाएंगे।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब हम एक खबर पाकिस्तान से सुनवाते हैं, जहां अल्पसंख्यकों की बात का तस्वर आते ही जहन में ख्याल आता है उनके खिलाफ हिंसा और असहिष्णुता की घटनाएं, जो अक्सर पढ़ने और सुनने में आती हैं। इन सब के बीच बीबीसी की सभा इतिजाज पहुंची एक ऐसे गांव में जहां मुस्लिम समुदाय के लोग पड़ोसी ईसाइयों के लिए चर्च बनवा रहे हैं।
इजाज के गांव में मुसलमानों की अक्सरियत है और यहां के बासी मजहब के फरहाइज निभाने के बाद दोस्ती का फर्ज भी निभाते हैं। गांव की गलियों में अजान गूंज रही है। एजाज फारूक मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद से निकलते ही वो गिरजाघर का रुख करते हैं। इस गिरजाघर की अभी दीवारें ही खड़ी हैं। एजाज भी बाकी गाँव वालों के साथ खुदाई कर रहे हैं, ईंटों पर लेप लगा रहे हैं। गाँव की मसीही बरादरी के लिए पहला गिरजाघर तामीर किया जा रहा है और इसकी तामीर का बोझ मुसलमान और मसीही बरादरी के अफराद कंधे से कंधा मिलाकर इज्तमाई तौर पर बांट रहे हैं। इजाज़ फारूक ने कहा,
गोजरा के वाकयात के बाद हमने ना यहाँ पर कम्युनिटी फिर इकट्ठी हुई है। हमने कोशिश की है कि हम ऐसे मसाइल से दो चार ना हों, एक्टिविटीज अपनी बढ़ाई हैं जिसकी वजह से गिरजा भी उनको बना कर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे से और इकट्ठे होकर चलें, ऐसे वाकयात से बच सकें। जब से ये पाकिस्तान बना है ना, हम यहाँ पर सब इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई मसला नहीं है, भाइयों की तरह रहते हैं। हमने जरूर महसूस की इनकी भी इबादत गाह होनी चाहिए, इसलिए हम सब मुसलमान भी मिलकर इनका गिरजा बना रहे हैं।
फरियाल मसीह भी उन 8 ईसाई खानदानों में शामिल हैं जो दुहाइयों से इस मुस्लिम अक्सरियत गांव में मुकीम हैं। वो एजाज फारूक के हम मजहब ना सही लेकिन हम साए जरूर हैं। दोनों रोज सुबह अपने घरों से निकलकर सामने वाले करियाने स्टोर पर बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं और चाय पीते हैं। पंजाब के चंद बाकी इलाकों से मुख्तलिफ, यहाँ मसीही बरादरी की कोई अलग कॉलोनी नहीं बल्कि एक घर मुसलमान खानदान का तो दूसरा ईसाई का नजर आता है। सब आपस में घुल मिल कर रहते हैं और मजहब पर तफरीक का तसव्वुर शायद उनके पास से गुजरा ही नहीं। फरियाल मसीह ने बताया,
तकरीबन मेरी जी 1971 की तरीक पैदाइश है, जदों का मैं देखण डिया ना उदों तो असीं रल मिल के सारे एक जगह एक थान इकट्ठे रह रहे हैं। साढ़े कोई बद सलूकी नहीं, कोई सारे साढ़े ना एक दूजे ने असं प्यार मुहब्बत रहते हैं। एक दूजे दिन शादियों च, विहवों च, खुशी च, गमी च, हर थान असं शरीक हो रहे हैं। गोजरे वाला जी जिहड़ा वाकया होया ना, ऐसा वक्त खुदा ना लियाए, ना लियाए, बार बार कहना खुदा ना वक्त लियाए बुरा। इंशाल्लाह साडे मुसलमान भरा जिन्हें भी आ, भावें जट ने, भावें राई ने, कोई डोगर ने, असी ये साडे नाल मदद करनगे इंशाल्लाह।
मुबस्सिरीन के ख्याल में पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में गुज़श्ता सालों में अखिलियतों के खिलाफ शिदत पसंदी के वाकयात में इजाफा नजर आ रहा है। ये गांव भी गोजरा के उस इलाके से दूर नहीं जहां 2009 में मसीही बरादरी के खिलाफ मुश्तल हजूम के हमलों के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए थे और उनके घरों और गिरजों को जलाकर राख का ढेर बना दिया गया था। इस गांव के लोगों की यादें भी माजी के खून खराबे से छलनी हैं, लेकिन ये अमन का एक जजीरा कायम करके माजी की तल्ख यादों को पुरउम्मीद मुस्तकबिल में बदलना चाहते हैं। इस इलाके के बड़ी पैरिश के पादरी फादर आफ्ताब जेम्स का ख्याल है कि दूसरे मसालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ इज्तमाई इम्तियाजी सलूक पर इनफरादी सतह पर पुरखलूस रवैया हावी हो सकता है। फादर आफ्ताब जेम्स ने कहा,
इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि एक तरफ अगर गुजरे का वाकया होता है तो दूसरी तरफ आप इसे भी देख सकते हैं कि अगर मनफी चीज़ें होती हैं तो मुस्बत भी हो रही हैं। और इस गांव में, छोटे से गांव में मुसलमान बरादरी की तरफ से चर्च के लिए कंट्रीब्यूशन देना एक बहुत बड़ी अहम बात है कि लोगों में जज्बा है, लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं और मोहब्बत के माहौल में रहना चाहते हैं। अगर आग लगाने वाले हैं तो बुझाने वाले भी हैं।
ये इलाका कौमियत की एक छोटी सी मिसाल है जहाँ पाकिस्तानियों की शहरियत मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बुनियाद पर नहीं बांटी जा रही। अगर ऐसा मुमकिन है तो सवाल ये उठता है कि रियासती सतह पर इस सोच पर अमल दरामद कराने में वाज़े कमी क्यों है। सबा एतज़ाज़, BBC न्यूज़, गोजरा।
हम आपको अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार अगले कार्यक्रम में सुनाएंगे। इस समय समाचार कुछ समय की कमी हो गई थी और अब सुनते हैं एक बार फिर से विश्व समाचार मानसी दास से।
BBC समाचार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता गुरदास कामत ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में पिछले महीने सिनसिनाटी चिड़ियाघर में 3 साल के एक बच्चे के गोरिल्ला के बाड़े में गिर जाने के मामले में अभियोग पक्ष के वकील ने कहा है कि बच्चे के माता पिता पर कोई आरोप नहीं होंगे। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की प्रमुख जेनेट येलन ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाता है तो इसका संभावित असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में हूती विद्रोहियों से लड़ रहे गठबंधन को राज्यों और हथियारबंद गुटों की संयुक्त राष्ट्र की उस सूची से हटा दिया गया है जो युद्ध क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सऊदी अरब ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। BBC समाचार।
इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था देवाशीष कुमार ने। अगली मुलाकात 1 घंटे में विश्व भारती में। तब तक नजर बनाए रखिए BBC हिंदी .com पर। नमस्कार।